देश में समय समय पर महापुरुष अवतार लेकर आते रहे हैं। भारत में, अन्य देशों में, परंतु खेद है कि मनुष्य मात्र हमेशा से दुखी रहा है। भगवान भी कहते हैं जब धर्म की गिलानी होती है तो उससे अवतार लेते हैं। धर्म है, कितनी संप्रदाय है, तब भी देश में विदेशों में मनुष्य का आचरण वहीं का वहीं है। मनुष्य के भीतर में शांति नहीं है। असंतुष्ट है भीतर में। कई लोग तो अपने आप को आत्महत्या करने पर तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति हमारे देश में नहीं है। हमारे देश से यूरोप, अमेरिका में और भी बुरी है। मानसिक रोग उन देशों में भारत से कहीं अधिक है। पैसे भले ही उनके पास अधिक हो, विद्या अधिक हो, परंतु मानसिक तौर पर पश्चिम के लोग हमसे कहीं अधिक अशांत है। विज्ञान ने भी उन्नति की है, धर्म का भी प्रचार होता है। हजार लाखों नहीं तो हजारों किताबें प्रतिवर्ष छपती हैं। लोग बाग पढ़ लिख भी गए हैं, तब भी मनुष्य सुखी नहीं है। ये नहीं कि आज के सब असंतुष्ट है, दुख अनुभव करता है। यदि ऐसा होता तो भगवान कृष्ण गीता में क्यों भक्तों के गुण लिखते कि इस प्रकार के उसमें गुण होने चाहिए। उनमें एक गुण ये भी है कि व्यक्ति साधक भक्त, सच्चा भक्त, साधारण भक्त नहीं, आदर्श का भक्त, जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, तो उन गुणों की लिस्ट में, संख्या में एक गुण ये भी है कि भक्त संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उसके भीतर में शांति बनी रहनी चाहिए। शरीर दुख है, मानसिक दुख है, आर्थिक कठिनाई है, राजनीति की कठिनाई है और कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, परंतु भक्त जो है वो अपने भगवान के चरणों में अपनी सुरत को लगाए हुए वो संतुष्ट है। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, ना तो भगवान के जीवन काल में ऐसा हो पाया, ना भगवान राम के जीवन काल में हो पाया, ना अब है। हमारे देश में या अन्य देशों में लोग पागल से हो रहे हैं, मानसिक रोग हैं, मानसिक रोग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली है परंतु मनुष्य दुखी है। और जब मनुष्य आपस में बातें करते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें। समाज का कुछ रूप ही ऐसा बन गया है, हमारी सरकार का रूप ही ऐसा बन गया है, सरकारी अफसरों का व्यवहार ही कुछ ऐसा बन गया है, व्यापारियों का व्यवहार ही ऐसा बन गया है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, सारे संसार में वो शांति कैसे ला सकता है? सब दुखी हैं, चाहते हैं दुख से निवृत्त होने के लिए। महापुरुष आते हैं, वो कहते हैं कि राम का नाम लो, और आचरण बनाने वाले लोग जैसे देव समाज संस्था है, वो प्रभु में तो विश्वास नहीं करते, परंतु वो आचरण बनाने में बड़ा ही दिलचस्पी लेते हैं और बड़े ही उनमें हट योग है। वो झूठ नहीं बोले, अपने व्यवहार में कोई बुरी बात नहीं करेंगे। मेरे पास एक ग्राहक आया करता था फिरोजपुर से, फाजिलका से, देव समाजी था। पैसे पैसे के लिए वो बड़ा ना तो हमारी तरफ रहने देता था ना अपनी तरफ। आचरण पर वो बहुत बल देते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं आचरण ऊंचा होना चाहिए, व्यवहार ऊंचा होना चाहिए। ये थोड़े से लोग हैं फिरोजपुर के विभिन्न। और भी कई संप्रदाय पैदा हुए, परंतु कोई भी आज तक सारे विश्व को शांति नहीं प्रदान कर सकता। महात्मा बुद्ध के मन में एक करुणा उत्पन्न हुई कि वो किस प्रकार सारे विश्व को शांति प्रदान कर सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सुख में रहे, ना तो उसको शरीर तो रोग हो, ना उसको आर्थिक कठिनाई हो, ना मानसिक रोग हो, और ना आत्मिकता का अभाव। महापुरुष आते रहते हैं, उनके हृदय में करुणा होती है, करुणा के सागर कहलाते हैं। परमात्मा में करुणा का सागर है, महापुरुष में करुणा के सागर है। परंतु कितनी सफलता उनको मिली ये सब आप जानते हैं। हिस्ट्री तो ज्यादा हमें मिलती नहीं है, महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद अशोक ने, महाराज अशोक ने कोशिश की सारे भारत में शांति हो, बड़े बड़े नियम लिखे गए स्तंभों पर, अब भी वो मिलते हैं, बड़े अच्छे नियम लिखे हैं। वो एक लेक्चर देने के लिए तो बड़े अच्छे हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में वो नहीं उतरे हमारे देश में, ना भारत देश में। इससे पूर्व हमारे संतों ने बहुत सारों के तो नाम भी नहीं है, कुछ के नाम भी उन्होंने प्रयास किया, वेदांत का प्रचार किया, उपनिषदों का प्रचार किया, से पहले का समय है, तो उससे भी कोई जनता को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जनता का विभाजन कर दिया गया। ऊंची शिक्षा, ऊंची विद्या केवल सीमित लोगों के लिए रह गई, ना चाहते हुए भी ये बात समाज में आ गई। ये हमारा दुर्भाग्य है, इतनी ऊंची विद्या थी, आज हम गर्व करते हैं उन उपनिषदों पर, परंतु उनका सार हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। शंकराचार्य ने कोशिश की, बड़ी कोशिश की, देश के कोने कोने में जाके अपने केंद्र खोल, बहुत कोशिश की उनके गुरुदेव ने, उनके दादा गुरु ने, परंतु उन्होंने जितनी सेवा की अन्य किसी सन्यासी ने नहीं की। उन्होंने भी एकता का प्रचार किया, ताकि मनुष्य एकता के भाव को रोम रोम में बसा ले। मैं और प्रभु एक है, मैं और विश्व एक है, मैं और जीव जंतु सब एक है, मैं और ये विश्व बस पति एक है, मैं और ये जितने स्थूल वस्तु हैं, पत्थर आदि, ये सब एक है। एकता का प्रचार किया तो वही है, मैं तत्वसि, हम ब्रह्मस्मि, सब ब्रह्मस्मि, बहुत प्रचार किया। परंतु उनका प्रचार भी कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों तक सीमित रहा और अधिक समय तक नहीं चला। बाद में संत मत 15वीं शताब्दी में संत मत की लहर चली, कबीर साहब ने प्रचार किया, गुरु नानक ने प्रचार किया, अपने देश में तो उन्होंने सब जगह का भ्रमण किया, वे विदेशों में भी गए, इधर काबुल, मक्का, मदीना, ईरान, इराक आदि, इधर कहते हैं चीन में भी हो गए, इंडोनेशिया में भी गए, लंका में भी गए, बहुत भ्रमण किया। सबको व्यवहारिक जीवन में सुंदरता लाने का प्रचार किया, ऊंची ऊंची बातें, गहरी बातें की, परंतु कम, साधारण व्यक्ति की तरफ ज्यादा कोशिश की कि वे समाज में एकता से रहे, क्योंकि बिना एकता के, बिना समाज में एकता के प्रसन्नता नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती। बाप अमीर है, बच्चे गरीब हैं, तो बच्चों को कैसे सुख मिलेगा, और बाप भी पत्थर दिल होगा, उसको भी कैसे सुख मिलेगा। इसी तरह देश में अगर चाहे राजा है, वो बड़े सुख शांति से रहता है, और उसकी प्रजा भूखी रहती है, तो वहाँ शांति कहाँ। तो भिन्नता को मिटाने के लिए गुरु नानक ने अधिकांश प्रयास किया ताकि व्यक्ति को सुख मिले, समाज में शांति हो, राजा जो हो वो जबरदस्ती ना करे, प्रजा के साथ पिता बनकर व्यवहार करे, मुख्य साधन ये उनका था। कबीर साहब ने भी उनकी वाणी पढ़े, उनके ने भी इतना था, परंतु वो अधिक भ्रमे नहीं। इस तरह रविदास जी ने, नामदेव जी ने तथा अन्य संतों ने उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, सभी जगह संतों की 15वीं शताब्दी में लहर। खेद है कि इधर के रहने वाले लोग अपने संतों के प्रति, उनको ज्ञान है, परंतु दक्षिण के जो संत हैं उनका ज्ञान नहीं है। महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं, ज्ञानेश्वर जी, एकनाथ जी तथा अन्य संत, उनकी जीवनियों का हमें विशेष ज्ञान है। बड़े ऊंच कोटि के व्यक्ति दल हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है कि संसार में जीव को शांति, परंतु सफलता किसी को नहीं, किसी को नहीं। आखिर एक ही बात मिलती है, अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी व्यक्ति पहले अपने आप को सुधारे, दूसरे के दोष न देखे, अपने दोष देखे, स्वयं निरीक्षण करे कि उसमें कौन कौन सी कमी है। ये बात है तो सनातन संस्कृति के अनुसार, परंतु इसका अधिक प्रचार नहीं किया और ना इसका अधिक अभ्यास किया। उदाहरण मिलते हैं, ये नहीं कि उदाहरण नहीं मिलते, परंतु आम समाज में ये बात नहीं है। अपने आप को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के दोष देखता है, अपने दोषों को देखने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में रावण वृत्ति अहंकार देती है, कोई नहीं कह सकता, चाहे साधारण व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कुछ गुरु महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि जो अपने आप को बड़े संत कहते हैं, उनमें भी सूक्ष्म अहंकार होता है, और वो बड़े आदमी होते हुए बड़ी गलतियां करते हैं। कुछ गुरुदेव कहा करते थे कि समाज सम्मान व्यक्ति की ओर नहीं देखता है, जो लोग अपने आप को सत्संगी कहते हैं, समाज उनको सर से लेकर पांव तक देखता है कि ये अपने आप को सत्संगी कहता है, इसमें कौन सी विशेषता है। विशेषता तो समाज को नजर आती नहीं, दोष उनको देखते। इसलिए कुछ गुरु महाराज फरमाया करते थे कि बड़ा प्रत्येक सत्संगी को छिप के रहना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए कि मैं सत्संगी हूं, क्योंकि हम में बहुत कमी है। सत्संगी तो बदनाम होगा, सत्संग भी सारा बदनाम हो जाए, और इसी कारण हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो कहते हैं क्या ये शास्त्र है, क्या कुछ है। जितनी लड़ाइयां पढ़े लिखे व्यक्ति ने किए हैं, विशेषकर जब हम यूरोप की हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो हमारे साथी कहा करते थे कि ये क्या पढ़ाई है, सारे विश्व में धार्मिक व्यक्तियों ने युद्ध किए। आप यूरोप की और खासकर इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़े तो आप देखेंगे कि पोप और राजा की लड़ाई होती, जिस तरह पोप होता था दूसरी तरफ जो राजा होता था, यानी सैकड़ों वर्ष पोप और राजा के साथ लड़ाई होती, सैकड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों आदमी मारे गए इस धार्मिक, हमारे देश में भी धार्मिक युद्ध। तो इसका सार लोगों ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, प्रत्येक व्यक्ति को, छोड़ दो समाज को, छोड़ दो राज्य को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को सुधारना चाहिए। इसी आशय को लेके महात्मा गांधी ने कहा, उनकी भी संसार बड़ी आलोचना करते थे, ये क्या घटिया बात करते हैं, हिंसा हिंसा बात करते हैं, रोज तो हत्याएं होती हैं। उस वक्त भी उग्रवादी थे कांग्रेस में या दूसरी समाज में, ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं थे, अभी नहीं, उस वक्त भी बहुत थे, क्योंकि उस वक्त रहते अंग्रेजों के साथ, इसलिए हम उनका सम्मान करते थे, वास्तव में अंग्रेज उनको उग्रवादी कहा करते थे, जो राजा होता वैसे कहा करता है। तो महात्मा गांधी कहते थे इस हिंसा की जरूरत नहीं है, इन कत्लों की जरूरत नहीं, उस वक्त भी कहते थे, ब्रिटिश राज इतना मजबूत था उसको निकालने के लिए जनता तड़प रही थी, महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा से चले, समाज कहता था नहीं हिंसा से चलेगा, जवाहरलाल नेहरू ने भी विद्रोह किया महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र तो आप जानते हैं वो छोड़कर चले गए, उन्होंने नेशनल आर्मी पता की, इस तरह और लोग हमारे नेताओं ने बहुत कुर्बानियां दी, परंतु महात्मा गांधी डटे रहे, उन्हें कहा नहीं स्वराज मिलेगा तो अहिंसा के साथ, और वो कहा करते थे कि यदि मेरे जीवन जीते एक व्यक्ति भी मेरे आशा के अनुसार अहिंसक बन जाए तो मैं अपने प्राण सुख से छोड़ पाऊंगा, और इस आशा से छोड़ूंगा कि मेरे पीछे भारत को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, देश उनके भीतर में देश का बहुत ही था। तो कहने का अर्थ ये है, गांधी जी ने भी यही कहा, हजरत ईसा ने भी यही कहा, और महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, स्वयं का बलिदान दिया, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि मनुष्य अपने आप को सुधारे। तो हमें क्या करना है, हमें भी महात्मा गांधी जी की प्रेरणा लेनी है और महापुरुषों की प्रेरणा लेनी है, हजरत ईसा की प्रेरणा लेनी है, अपने आप को सुधारना है, भूल कर भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, खासकर दोष तो नहीं देखने चाहिए, दोष देखने हो तो अपने देख। आप कहेंगे ये कैसे धार्मिक जी, ये कैसा धार्मिक जीवन है? जब तक व्यक्ति भीतर में निर्मल नहीं हो जाता, गंग नीर की तरह निर्मल नहीं हो जाता, उसके संस्कार खत्म नहीं हो जाते, उसके भीतर में से द्वंद खत्म नहीं हो जाते, उसके भीतर में से और अन्य अवगुण खत्म नहीं हो जाते, सबसे ज्यादा अवगुण जो है वो अहंकार का है, और अहंकार के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान के कारण फिर हम मोह में बन, इस मोह से अनासक्त कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, भगवान ने नहीं और भी जितने महापुरुष आए उन्होंने इसी प्रकार का उपदेश दिया, परंतु व्यक्ति सफल नहीं, सफल होने का एक ही रास्ता है, सारे विश्व की चिंता मत करिए, ये ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो अवतारों का या महापुरुषों पर निर्भर है, परमात्मा पर निर्भर है, परंतु व्यक्ति को अपने सुख के लिए अति आवश्यक है कि वो अपने आप को देखे, स्वयं निरीक्षण करे, भूल कर भी दूसरे की आलोचना नहीं करे, दूसरे के दोष नहीं देखे, यदि हम दोष दूसरे के दोष देखते हैं तो वो दोष हमारे होते हैं, कृष्णमूर्ति कहता है जो दूसरे में दोष देखता है वही दोष उसके अपने ही होते हैं, वो अपने दोषों से दूसरे में दोष देखता है, ये बात सही है, हमें दूसरे में क्यों दोष दिखते, हम स्वयं दोषी हैं। बड़ा कठिन है। हमारे ऋषियों ने महापुरुषों ने तप किए इसलिए, यज्ञ किए इसलिए, अपने आप को निर्मल करने के लिए हम गंगा जी जाते हैं, निर्मल होने के लिए। केवल स्नान नहीं करना है, स्नान करना है भीतर में जो अवगुण है, वो जो भीतर में मलिनता है उस गंगा के निर्मल जल से धोने हैं, अर्थात ज्ञान से भीतर में शुद्ध करना है अपने आप, प्रेम की धारा से अपने आप शुद्ध करना है। केवल बातों से नहीं होगा। महात्मा गांधी का कहना गलत नहीं था कि यदि एक आदमी पूर्ण बन जाता है तो वो अपना कल्याण तो कर सकता है, वो विश्व का कल्याण कर सकता है। आप लोग कहेंगे कैसे? इसका उत्तर एक महापुरुष ने दिया है कि अग्नि का एक कण सारे जंगल को जला देता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति यदि निर्मल हो जाए तो वो सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? सूरज क्या करता है? सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, उसको कुछ करना पड़ता है? वो आकामी है, भगवान परमात्मा आकामी है, तो वो व्यक्ति भी आकामी बन जाता है, सूरज की तरह बन जाता है। उसके भीतर से आत्मा का प्रकाश निकलकर सारे विश्व में फैलता है, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही लोगों को संत कहते हैं। यदि हम सब दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने आप को निर्मल करें, हम दुनिया की आलोचना नहीं करें, सुबह से लेकर शाम तक हम अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, सब जगह प्रतिक्रिया, कोई कहीं नहीं देखा सुना पढ़ा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं लक्षण करता हो, यानी तप करता हो। जितने महापुरुष घर छोड़ के गए तप काय का तप करने के लिए, परमात्मा तो भीतर में है ही, बाहर में भी है ही। वो तप यही है कि अपने आप को अधिकारी बनाए, निर्मल करें, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा एक हो जाए, भीतर में से हमारा अहंकार निकल जाए। जो हम ये समझ रहे हैं हम इलाहदा है, जो संसार के लोग इलाहदा है, मेरे से इलाहदा है, परमात्मा से इलाहदा, ये सब भूल है। तो जब स्वरक्षण करेंगे, हम निर्मल हो जाएंगे, तो सब जगह प्रकाश प्रकाश है। 10-20 आदमी ऐसे उत्पन्न हो जाए विश्व में, ये अरविंद घोष भी चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ये कोशिश भी की, और कुछ प्रमाण भी उन्होंने अपने साथ में दिए कि किस प्रकार पहले युद्ध में उन्होंने कुछ बड़े ही खतरनाक जर्नैलों को दूर बैठे हुए पांडिचेरी में बैठे हुए, कहां फ्रांस और जर्मनी में बैठे हुए जर्नैलों का उन्होंने सुधार किया है। तो स्वरक्षण साधन है, कोई भी धर्म हो उसका मुख्य साधन जो है अपने आप को भीतर में झांको, भीतर में झांको। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम किसी को उपदेश नहीं दें, वास्तव में बुरा न मनाएं, हमारे हम बोलने का तरीका नहीं है, हम खाम का बोल जाते हैं। वास्तव में बोलना चाहिए हमारा जीवन। हमारे पूर्वज नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते। पूज्य लाला जी महाराज के समय से कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ, उसके बाद कुछ बढ़ता गया और मैं बहुत बढ़ गया। अब मेरा मन करता है मैं चुप रहा था, परंतु दुखी होता हूँ, ना तो मेरा अपना सुधार हो रहा है, ना मेरे भाइयों का सुधार, उसका दोष मेरा है। आपका दोष नहीं, मैं पूज्य गुरुदेव के शब्द दोहरा रहा हूं। जो आचार्य है उसी का दोष है यदि किसी की उन्नति नहीं होती या उसके पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है सत्संगी का, तो वो आचार्य का दायित्व है। उदाहरण दिया करते थे, परिवार में यदि कोई सदस्य गलती करता है तो वे फरमाया करते थे परिवार का जो मुखी है उस सदस्य की गलती का वही जिम्मेवार है, माता पिता ही बच्चों की गलतियों के जिम्मेवार है, इसलिए सत्संगियों की जिम्मेवारी आचार्य पर है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, साधना जो करते हैं लोग वह महत्व देते हैं साधना पर, ठीक है, परंतु गुरु महाराज के शब्दों को हम भूल जाते हैं, ये एक शक्ति की पूजा है, इससे हमें बल मिलता है, इस बल को धारण करके हम स्वयं निरीक्षण करें, अपने अवगुणों को मिटाएं, अवगुणों से मुक्त हों, और आगे चल के जो मुख्य अवगुण होगा वो ये है कि हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हम आत्मा नहीं हैं, हम परमात्मा की आश नहीं है, इस अवगुण को भी मिटाइए, ये अंत में आएगा। तो शक्ति की हमारे यहाँ जो देश में पूजा होती है शक्ति की, वो गलत नहीं है, उस शक्ति की पूजा को लेकर, साधना की शक्ति को लेकर अपनी त्रुटियों को दूर करें, पाठ पूजा जितने भी करते हैं उनका सार समझकर, वही वास्तविक शक्ति है, उसका सहारा लेकर अपनी जितनी कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, सभी कमजोरियां दूर हो सकती है, उस शक्ति का आश्रय है, शक्ति की पूजा गलत नहीं, बिना शक्ति की पूजा के हम वास्तविक तपस्या नहीं कर सकते, अपने अवगुणों से मुक्त नहीं हो सकते, बड़े दृढ़ संकल्प की जरूरत है, धैर्य की आवश्यकता है, यानी जो गुणों की लिस्ट दे रखी है 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के लिए, उन गुणों को अपनाना है, वही शक्ति की पूजा है, केवल आंख बंद करना ही काफी नहीं है, उन गुणों को पढ़ना है, मनन करना है, अपनाने की कोशिश करनी है। गुरुदेव सबका कल्याण करें।